का चौथा दिन आरंभ हुआ। नियम के अनुसार में हम लोगों का तृतीय दिवस में कल सप्तम स्कंद समाप्त जैसा ही है। प्रहलाद महाराज जी का चरित्र हम लोगों ने सुना। प्रहलाद महाराज जी परम भागवत या परम वैष्णव है। उनमें भागवत के लिखे गए जितने भी गुण हैं आई उनमें भागवत के जो 26 गुण लिखे गए हैं उनमें पूर्ण मात्रा में वो सब गुण हैं। बड़े धीर हैं, गंभीर हैं, अकृतद्रोह भी उनमें है। अकृतद्रोह माने क्या? कोई ऐसे है तो उस पर तो कोई द्रोह आचरण करेंगे ही नहीं। जो द्रोह हमारे प्रति आचरण कर रहा है उसके प्रति भी द्रोह आचरण नहीं करते। एकांतिक रूप में भगवान के शरणागत भी हैं, इसलिए उनमें समस्त गुण प्रहलाद महाराज। इसलिए हम लोगों के प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी 108 बार उनका चरित्र श्रवण किया। रूपानुग वैष्णव होने पर भी, रूपानुगत तो किसको कहते हैं उनसे अधिक कौन जानेगा। उनको रूपानु क्या, उनको तो नैन मंजरी भी कहते हैं। और 108 बार उसका श्रवण किया और पठन पाठन। उनको छोड़ दो जो राधा भाव आस्वादन करने के लिए आए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी राधा भाव द्युति सुबलितम नौम कृष्ण स्वरूपम, जो राधा भाव और कांति को कृष्ण लेकर के आए हैं, वो कृष्ण और गदाधर पंडित के मुख से प्रहलाद जी का चरित्र सुनते और कहते अघाते नहीं। भगवान ने भी उनको आशीर्वाद दिया, बर दिया। प्रहलाद महाराज भक्तों के अवधि हैं, इसलिए जहां कहीं भी कुछ कोई कथा होती है नृसिंह जी के साथ साथ में प्रहलाद महाराज जी को नमन करते हैं, उनकी जय देते हैं। इसलिए यदि वैष्णव होना है, भक्त होना है, तो प्रहलाद महाराज जी को स्मरण करो, जिससे कि हम लोग वैसा हो सकें। तब फिर रस की बात पीछे, वैसा होना चाहिए। अभी हम लोग कल कुछ संक्षेप में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष इत्यादि के संबंध में, जय विजय के संबंध में बतलाए थे। विष्णु पुराण के अनुसार में पराशर जी कथा कह रहे हैं, तो वो बतला रहे हैं कि, या भागवत में भी ऐसा देखते हैं, सर्वत्र ही ऐसा देखते हैं हम लोग, जय विजय भगवान के द्वारपाल। वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में पहली बार आए। भगवान नृसिंह जी ने उनको मारा तो उनको मुक्ति हो जानी चाहिए थी, मोक्ष हो जाना चाहिए था, किंतु हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? फिर रावण कुंभकर्ण के रूप में आए दोनों, फिर भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। हे शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में आए तो उनकी मुक्ति। कारण क्या? पाया कारण से ये तीन जन्मों के लिए ही उनका विषमपात था, पहला मुख्य कारण थे। दूसरा कारण ये कि और सब अवतारों के लिए लिखा गया है कि भगवान आठ गुण है कृष्ण में, जीवों में ये गुण आंशिक बिंदु बिंदु के रूप में या अणु के रूप में केवल 50 गुण। शंकर इत्यादि देवताओं में, ब्रह्मा शंकर इत्यादि में ये गुण 50 रूप में किंतु बिंदु बिंदु रूप में, वहां परमाणु और यहां बिंदु। और नारायण इत्यादि में नारायण, रामचंद्र जी और भगवान के जितने भी अवतार हैं उनमें 60 गुण पूर्ण रूप में है। और कृष्ण में ये गुण तो है ही हैं, ये परिपूर्णतम मात्रा में, और इसके अतिरिक्त 4 गुण और हैं जो और किसी में भी अवतार में भी नहीं है, शंकर इत्यादि और जीवों की तो बात ही क्या। वो 4 विशेष गुण हैं, रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, ये किसी में नहीं है, इसलिए कृष्ण में परिपूर्णतम मात्रा में ये। अवतारों में जो 60 गुण हैं, जो ब्रह्मा और शंकर से अधिक 4 गुण हैं, 5 गुण, उन गुणों में एक हतारी गति दायक भी एक गुण है, सब समय अपने स्वरूप में रहे, मोक्ष को भी धिक्कृत करने वाले, अद्भुत रूप उनका है। और हतारी गत दायक, जिनको वो मारेंगे उनको गति दायक हैं। कृष्ण में ये क्या चीजें हैं? ये तो नारायण इत्यादि में पूर्ण रूप है, रामचंद्र जी में पूर्ण रूप है, किंतु कृष्ण में ये चरम रूप में है, पराकाष्ठा रूप में ये 4 गुण, 5 गुण और वो आगे का वो सब कुछ चरम रूप में। अब हतारी गति दायक माने क्या होता है? हत अरी गति दायक, जिनको उन्होंने मारा उनको गति दी। गति माने बहुत तरह का होता है, जिसको मारा उसको उन्होंने ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, अपूर्व भोग ये भी है, मुक्ति भी दिया, प्रेम भी दे सकते हैं, ये सब गति के अंतर्गत। किसी को सुख सुविधाएं, भोग, ऐश्वर्य इत्यादि दे देना ये भी एक गति है। किसी को स्वर्ग दे दिया ये भी गति, किसी को मोक्ष दे दिया ये भी एक गति, और किसी को प्रेम दे दिया ये भी गति है। यहां पर नारायण इत्यादि क्या करते हैं? यदि कोई भजन करता है तो उसको सहज ही मुक्ति दे दे, किंतु जिसको मारेंगे ये लोग उसकी गति नहीं देंगे, माने मुक्ति नहीं देंगे, जन्म मरण का जो चक्कर है, प्रवाह, उसको बंद नहीं करेंगे, ऐसे दे देंगे भजन करने वाले, किंतु ये चीज नहीं दे। और कृष्ण में क्या है? हतारी गति दायक, चरम सीमा में जिसको वो मार देते हैं उनको मोक्ष तक दे देते हैं, मोक्ष माने सायुज्य तक भी दे दे, सारूप्य दे देंगे, षष्ठी इत्यादि जो 5 प्रकार की मुक्ति है वो दे देंगे। इसलिए कृष्ण ने जिन असुरों को मारा मुक्ति भी हो गई है, किसी किसी को अपना स्वरूप भी दे दिया, किसी को सालुक्य भी दे दिया है, किसी को प्रेम भी दे दिया, पूतना को तो प्रेम तक दे दिया, धात्र उचित गति दे दी और उसको गोलोक में पहुंचा दिया। तो बिना प्रेम के ये गोलोक में बैकुंठ में कोई नहीं जा सकता, वो भी गति दे दी। यहां पर एक विचार करने की विशेष बात है कि जो लोग भगवान से द्रोह कर रहे हैं, भगवान से शत्रुता कर रहे हैं, भगवान को मारने की चेष्टा कर रहे हैं, और जो लोग भगवान से प्रेम कर रहे हैं, प्रीति कर रहे हैं, उन दोनों की एक गति होगी कि नहीं? कभी नहीं हो सकती। जो भगवान के मारने के लिए चेष्टा कर रहा है, भगवान से शत्रुता कर रहा है, उसकी गति यदि मोक्ष हो तो भक्तों को यदि मोक्ष गति मिलती है तो ये तो आस्तिक गति हुई ने? जो लोग भगवान से शत्रुता कर रहे हैं वो असुर हैं, और उनको यदि मोक्ष मिला तो ये आस्तिक गति हुई, तो भक्तों को भगवान ऐसी गति क्यों देंगे? जो सारा जीवन भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, प्रेम करते हैं भगवान से, इसलिए उसको मोक्ष नहीं देते, और देने पर भी भगवान भक्त लोग उसको ग्रहण नहीं करते हैं। दीमानम अपना गृहंति बिना मत से वनं, देने पर भी उन्हें आश्रित गति है ना। इसलिए जो लोग मोक्ष ग्रहण करते हैं, जो अद्वैतवादी हैं, जो मोक्ष लेते हैं, हम ब्रह्मास्मि कहते हैं, मैं ब्रह्म में मिल जाऊंगा, ये शारीरिक जो मुक्ति चाहते हैं, वो जितना भी कीर्तन करें, भजन करें, जो कुछ भी करें, अंत में वो गति चाहते हैं कि मैं भगवान में मिल जाऊं, तो ये आश्रु की गति है। उनको यदि कोई कहता है ये बड़े रसिक हैं, ये बड़े विद्वान हैं, ये बड़े भक्त हैं, तो समझना चाहिए कि जो ऐसा कह रहा है वो भी असुर ही है। असुरों की प्रशंसा कौन करता है? जो असुर होते हैं, इसलिए उसका अनुमोदन करने वाला भी वही है। इसलिए जो ये कहते हैं कि मैं अंत में ब्रह्म में लीन हो गया, भागवत पढ़ते पढ़ते पढ़ते, तो उनको क्या हुआ? असुर गति हुई, तो असुर। और जो लोग कहते हैं कि ये बड़े अच्छे भक्त हैं ऐसे, उनको भी भक्ति की धारणा बेकार की है, उनको भी भक्ति का विचार की है। इसलिए दोनों की गतियां एक नहीं हो सकती। जिनकी विचार बुद्धि सब लुप्त हो जाती है, वो ब्रह्म में सायुज्य लाभ करके वैसे गति पाए। हमारे जय विजय की क्या यही अंतिम गति हुई? इस पर विचार करना है। उसी को विचार करते हुए पराशर जी कह रहे हैं, देखो भाई, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष तो पहले मारा गया, उसको बड़ा रूप में मारा, और इनको निसिंह रूप में मारा। जिस समय ये लोग लड़ रहे थे, महामाया के द्वारा उनकी बुद्धि को ढक करके उनमें ये विष्णु है ये भावना नहीं आई। उनकी ये था, हिरण्यकश्यप को विचार कर रहा, तो अद्भुत तेजशाली कोई जीव है, साधारण सा, असाधारण, विष्णु की बुद्धि नहीं आई, उसमें आवेश उसका नहीं हुआ। आवेश होने से ही सिद्धि होती है, आवेश तो था नहीं, इसलिए उसकी मुक्ति नहीं। और दूसरी बात, दूसरा कारण, भगवान के अंश के अंश के अंश कला नृसिंह जी, इसलिए उसकी गति हुई किंतु मोक्ष नहीं हुआ। गति माने यहां क्या हुई? इंद्र से भी अधिक उसको भोग ऐश्वर्य राज मिला, लंबी आयु मिली। रावण करीब करीब सत्य युग का ही व्यक्ति समझिए, उसको सत्य युग से, उसके प्रारंभ से ही ये था। दिलीप महाराज को भी हराया था और बड़े लोगों को हराया था। ये त्रेता युग के प्रारंभ में थे, तो उसमें कितनी लंबी आयु और भोग ऐसा उसको मिला जो इंद्र को खदेड़ दिया स्वर्ग से और उसका राजा बन बैठा। कुबेर की समस्त संपत्ति, सोने की लंका उसको ग्रहण कर ली। ये सब गतियां हैं, ये सब गति को प्राप्त हुआ, किंतु आवेश नहीं हुआ राम। सीता जी को भी चुरा लाया और राम को साधारण एक मनुष्य समझा और सीता जी को अपनी भोग्य बनाने के लिए, बल्कि उस तरह से कुछ आसक्त था। अंत में भगवान से जो मारा गया, भगवान ने क्या किया, उसकी बुद्धि को लोप किया। जिसको अगस्त ऋषि ने जो धनुष बाण दिए थे, बाण से हृदय में मारा, अमृत उसके नाभि में था, लोग कहते हैं बाण से उसे सुखा दिया। और जब वो निकल गया उसका भाव हुए तो एकदम निर्विशेष भाव जैसा हो गया। उसकी अंतिम में मरते समय में भगवान के प्रति आसक्ति और भाव नहीं था, जैसे कि भरत जी का हिरण के प्रति था। वो भूल गया और साधारण मनुष्य समझा था पहले, इसलिए आसक्ति उनमें नहीं होने से वो मरा, इसलिए उसकी गति नहीं। और रामचंद्र जी भी रामादि मूर्ति सु कला नियमेन तिष्ठन करोति नाना अवतार, किंतु
कृष्ण स्वयं
परमापुमान जो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तात्पर्य क्या, राम भी उनकी ये गर्भदशाई के अवतार कहीं बतलाए जाते हैं, कभी कृष्ण के बतलाए जाते हैं, जैसे भी वो परावस्था अवतार है। इसलिए गति उसको कैसी हुई, शिशुपाल होकर के और दंत वक्र होकर के ये जन्मे, और शिशुपाल की स्थिति में भी प्रचुर भोग लाभ किया, किंतु इसमें आवेश होने का एक कारण आ गया। बिना कारण के आवेश नहीं होगा, या तो सौंदर्य हो या माधुर्य हो या काम हो या शत्रु भाव हो, कोई कारण होना चाहिए आवेश होने के लिए। शिशुपाल में और रावण और हिरण्यकश्यप में यह अंतर था कि रावण और हिरण्यकश्यप जन्म से ही ये नहीं समझे कि ये हमारे नृसिंह जी और
रामचंद्र
नहीं, नृसिंह जी और
रामचंद्र
नहीं ठहर, रामचंद्र जी हमारे जन्म से ही शत्रु हैं। नृसिंह जी एकदम मरने के समय में एकदम आ गए, इसलिए उसको आवेश होने का समय नहीं मिला, और ये हमारे मारने वाले हैं ये भी भाव नहीं आया। वो कह रहा है ये तो अद्भुत, नॉन मृग न मानुष, उन्होंने ये समझा। और हठात प्रकटित हुए, यदि ये मुझे मार दे, और हो सकता है कि मुझे मार भी न दे, मैं इसे मरूं भी नहीं, शंका उसकी बनी हुई थी। अंत तक रावण में भी ऐसा था, अंत तक वो सोच रहा था कि मैं इनको मार दूं, हमें मारेंगे ये निश्चित नहीं, और सादा आसक्ति होने का समय नहीं हुआ, और जन्म से ही अपना शत्रु नहीं माना। शत्रु कब से माना, जब उन्होंने नाक कान सूर्पनखा की कटवा ली तब से अपना शत्रु माना, और आवेश भी ऐसा नहीं। और शिशुपाल में क्या हुआ, शिशुपाल जब छोटा बच्चा जन्म उसका हुआ तभी तो उसके चार हाथ आ गए, और जिसकी जिसके स्पर्श से या देखने से इसके दो खुजाएं दूर हो जाएंगी और साधारण मनुष्य के रूप में हो जाएगा, वही इसको मारेगा। वो एक तो इसको हो गया, ये हमारा बैरी है, यही हमको मारेगा, कौन मारेगा। वही कृष्ण जब आए उनके सामने और उसके तरफ में देखा, गोदी प्रेम से लेकर के लाड प्यार करने के लिए अपने भांजे को, भांजा ना कौन,
भाई
भाई को, बुआ का लड़का, उसको गोदी में लिया और लेते ही क्या हुआ, उसके दो भुजाए गिर गई। अब उसकी मैया रोने लग गई, बेटा तुम इसको मारना मत, ये तुम्हारे हाथ से इसकी मृत्यु लिखी हुई है। जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तब मैया से और सब लोगों से सुना कि कृष्ण के हाथों से ये वासुदेव है, इन्हीं से मृत्यु हो गई। और दूसरी बात क्या, उन्होंने नारद इत्यादि ऋषि से भी सुन लिया, अरे ये जो कृष्ण वासुदेव है ये पूर्व पहले तुमको मारा था जब तुम रावण था, और जब तुम हिरण्यकश्यपु था उसमें भी तुमको मारा, ये जन्म जन्म में तुम्हारा शत्रु है और इसमें भी तुमको मारेगा। बस धीरे धीरे आवेश इसमें आ गया, बिना आवेश के प्रेम तो बहुत दूर की बात, मुक्ति भी नहीं होगी, इसलिए उसको आवेश होने का सुयोग मिला। दूसरी बात, आवेश कैसे हुआ, अब ये मरने वाला है ना, इसलिए बचपन से ही उसने एक बार देखा कृष्ण को तो चतुर्भुज रूप में देखा, अरे इसकी दो भुजाएं हैं और फिर ये चार भुजा वाला ये बन गया। द्वारका में कभी कभी द्विभुज और अधिकांश चतुर्भुज रहते हैं, अब उनको चतुर्भुज देखा, अरे सचमुच में वही हरि है जिसने हमको उस जन्म में मारा था, पिछले जन्मों में, ये हमारा जन्म जन्म का शत्रु है, इसको ध्वंस करना अनिवार्य है। और बचपन से ही प्रतिदिन पानी पी पी करके कोसता था और गाली देता था, ना? गाली देते देते मुख सूख गया ना, तब उठा लिया ग्लास का पानी और पी लिया और फिर गाली देने लगा। अरे इसकी कोई जाति का ठीक है, कभी ग्वाला बनता है कभी जादव बनता है, इसकी जाति पाति कोई है ही नहीं। अरे इसका न माता पिता दोनों का कोई न माता है न पिता इसका, अच्छा इसकी मैया कौन, ये कहता है कभी ये जसोदा मैया और कभी कहता है कि मेरी मैया कोई है ही नहीं। तो ये कैसा हुआ, बेजन्मा है ये, भगवान को बेजन्मा कहा जाए तो ये गलत है कि ठीक है, एक तरह से ठीक भी है और एक तरह से बेजन्मा माने कौन इसका पिता है ये ठीक नहीं है, कोई ना कोई है। तो ये गाली हुई तो सरस्वती जी उसके जीवा पर बैठ करके जितनी गालियां देती हैं उनके लिए वो अच्छी अच्छी चीजों में वो लगाते, उसका अर्थ दूसरा कर देते हैं, बेजन्मा है, बे माता पिता का, इसका पिता का कोई ठीक नहीं, और अहिर है कि ग्वाला है, अरे ये तो सब घर घर में चोरी करके खाया, इसकी कोई जाति ही नहीं है, कोई जाति नहीं है, ठीक है न जाति का ठीक है न वर्ण का ठीक है, कोई इसका ठीक ही नहीं है, ऐसे कहते हैं। अरे देखो तो भ्रष्ट, अरे लोग सबकी स्त्रियों को या तो बेटी मानते हैं या मानते हैं मैया, उसको आदर देते हैं, अंततः बहन बेटी तो मानना ही चाहिए और मैया के रूप में। ये सब जितनी ग्वालिया ग्वालनों की कौन बहन है कि कौन भाई मई कौन है क्या, वो तो गाली दे रहा है ना सबको बटोर कर, और रात में रास करता है व्यभिचारी, और कोई ऐसा अच्छा भद्र घर का जन्म लेगा पेड़ पर चढ़कर और सब लड़कियों को नंगी करके और कहेगा जे तुम हमको हाथ उठा करके ऐसे ये बतलाओ तो कोई न ये भगवत्ता है न क्या है, न कोई एक साधारण मनुष्यता है न कि क्या है, ऐसे ही दिन भर गाली देता था। और यहां तक कि रायसुई यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर के, जहां एक तरफ में कृष्ण जो आ रहा है उसी के पैर धो रहे हैं भगवान होकर के भी, और कहां ये उनकी आगे पूजा के लिए इनकी निंदा करने लगा, कृष्ण ने कहा था 100 गालियां जहां पार करेगा तब मैं इसको मारूंगा, ऐसे नहीं मारूंगा, उसकी मैया को उन्होंने कह दिया। अब उस दिन एकदम लग गया, पहले ही पानी पी लिया हो घाट पे, और गाली देने लगा। गाली देते 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 जब 100 पार हो गया, उससे भी अधिक पार हो गया, तो कृष्ण ने कहा ओ हमें आविष्ट है, इस पर कृपा करनी चाहिए। उन्होंने कहा सुदर्शन इसको देना चाहिए। सुदर्शन मैंने क्या, मैं जैसा हूं ऐसा ही इसको दर्शन देना चाहिए। इसलिए सुदर्शन जी को भेजा और सुदर्शन जी की को उसमें से आरो में से जो छटा निकल रही है, प्रकाश निकला, उस प्रकाश में सचमुच उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया। उस आवेश के कारण उसका यह शरीर जो तामसिक भाव का था, 3 जन्मों का ये जो था, वो सब कुछ दूर हो गया और उन्होंने ब्रह्म के रूप में दर्शन करके, बस ब्रह्म ही के रूप में नहीं, ब्रह्म की ज्योति कहां से आती है, भगवान के चरणों के नखों से आती है, वो उनमें झट विलीन हो गया। विलीन हो करके क्या हुआ, अरे भगवान के अंदर में, कृष्ण के अंदर में नारायण भी थे, सब अवतार उनमें रहते हैं, बस जिनका पार्षद था अर्थात नारायण का ये पार्षद था उसमें नारायण थे, बस उनके साथ में वो मिल गया, उनकी सेवा में वो लग गया ना? और जब लीला समाप्त हुई तो कृष्ण के शरीर से वो लोग सब निकल करके बैकुंठ में चले गए। कोई कहां चले गए, उनके साथ में बैकुंठ में जाकर के सेवा करने लग गया। इस तरह से उसको पार्षद फिर से मिल गया, भगवान की सेवा लग गया। यहां पर उसका सारूप्य अथवा साइज इत्यादि नहीं हुआ, विशेष करके साइज उसकी गति नहीं हुई। उसकी गति क्या हुई, लोगों ने बाहर से देखा कि उसमें विलीन हो गया, चिड़िया घोंसले में चली गई विलीन हो गई, जंगल में गाय विलीन हो गई, गाय का वो पेड़ और ये सब हो जाएगी नहीं। उसी प्रकार से भगवान के श्री अंगों में जब विश्व ब्रह्मांड उसके अंदर में है, एक नहीं उनके एक एक लोम कोप में कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांड और कोटि कोटि जीव हैं, तो ये उसमें मिल करके एक कैसे हो जाएगा। एक और एक कभी भी एक नहीं होता, जो एक और एक को मिला करके एक कहते हैं माने गणित कुछ नहीं जानते, वो मूर्ख हैं। एक और एक दो होता है, इसलिए जीव भगवान में मिलकर के कभी एक नहीं होता। उसी प्रकार से जय विजय अंत में हतारी गत अवतारी है ना, उसको गति भी दे दी अंतिम गति, और उसको प्रेम भी दे दिया जो पहले उसके हृदय में था, और वो जय विजय के रूप में उनकी सेवा। इसी तरह से इस समय बहुत से रहस्य हैं, इन रहस्यों को हमारे आचार्यों ने प्रकट किया है। इन सब को जान करके केवल कथा ऐसे पढ़ लेने से नहीं, इनके सिद्धांतों में प्रवेश करके यदि हम इसको अच्छी तरह से समझें तो हम इस पर विचार करके कुछ भक्ति लाइन में अग्रसर हो सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोगों की कथा जहां से आरंभ हुई शेष हुई थी कल, वहां से हम लोग आरंभ
करते।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
अष्टमी
स्कंद की कथाओं को समझ लिया।
गजेंद्र मुखन भी आप लोगों ने सुना, समुद्र मंथन और भगवान बामन देव जी का प्रापट्य और उनके संबंध में सुना। जब तक संसार में संसार की वासना होती है और अपने स्थूल शरीर में मैं की बुद्धि होती है, तब तक भगवान किसी को दर्शन नहीं देते। ये बात तो ठीक है, जब तक कि आत्मज्ञान नहीं होगा, भगवान का भजन नहीं करेगा, भक्ति नहीं होगी और ये शरीर से आत्मबुद्धि हट करके मैं भगवान का दास, ऐसा भजन करते 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 अनर्थ निवृत्ति इत्यादि हो जाने के बाद ही में भक्ति होती है और तब भगवान दर्शन देते हैं। अभी हम लोगों ने सुना गजग्रह का युद्ध हुआ और उसमें भगवान ने ग्रह को मारकर हाथी को दर्शन दिए, उसका उद्धार। गीता में भी ऐसा लिखा गया, चतुर्विधा भजन्ते मां सुकृतनो अर्जुन, आतो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्त। जो अत्यंत जगत में आर्त हो जाए, जिनकी अर्थ की लालसा है, जो जिज्ञासु हैं और जो अत्यंत ज्ञानी हैं, वो चार प्रकार के लोग हमारा भजन करते हैं। किंतु गीता के इन वाक्यों में और इसमें कुछ गूढ़ रहस्य है। जब तक द्रौपदी भगवान से प्रार्थना कर रही है और अंचल अपने दांतों के अंदर है और मैं अपनी रक्षा कर लूंगी, हमारे पांडव लोग रक्षा कर लेंगे, भीष्म पितामह कर लेंगे और कर लेंगे, तब तक प्रभु नहीं आए। प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना करते 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 जब देखा मेरे दांतों के तले जो कपड़े हैं इससे भी रक्षा नहीं होगी, तो उन्होंने हाथ हटा दिया, उठा दिया ऊपर, सब कुछ जगत का भूल गई। अब रक्षा करने वाला कोई नहीं है, अब आप ही हैं, रक्षा करें और ना करें ये आपके हाथों में मैंने समर्पण कर दिया। आंख बंद करके सब कुछ आत्मसमर्पण कर दिया, तो प्रभु तो कहीं दूर थे नहीं, बस छटा गए। वैसे ही ये गजेंद्र, वो हाथी प्रार्थना कर 60,000 वर्ष तक युद्ध हुआ ना, युद्ध हुआ 60,000 वर्ष, उसके भाई बंधु उसकी जितनी भी लाखों हजारों उनकी स्त्रियां थीं, उनके बच्चे थे, सब साथ छोड़ दिया, अकेले वो रह गया और उस समय में पकड़ करके खींच करके ले जा रहा है, बीच में कभी इधर आ रहा, करते 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 इसका सब बल खत्म कर दिया। जब लेकर के नाक और कान जब डूबने लगे तो देखा जे अब तो मैं मरा, अब कोई रक्षा करने वाला नहीं रहा। वैसे ही हमारे बंधु बांधव संसार के लोग, देवता लोग, कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता, ये पहले समझें। तब तक प्रभु आएंगे जब उनके शरणागत होंगे, अभी तक ये शरणागत नहीं हुआ, जब डूबने लगा और अब मर ही जाएगा जब ऐसी संभावना हुई, तो उसने कमल का फूल उठाया और भगवान के चरणों में निवेदन करने लगता है। अब मैं संसार समस्त, कोई भी हमारा रक्षक नहीं है, आप ही रक्षक। और इतने में उसके हृदय में ये स्फूर्ति हुई, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने इस शरीर की रक्षा के लिए प्रभु को मैं बुला रहा हूं, धिक्कार है मुझे, अरे ये शरीर तो मट्टी का एक दिन जाएगा, ये तो निर्जीव है, और आत्मा अजर अमर है, तो आत्मा अजर अमर है तो इसके लिए प्रभु को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो आत्मा हूं, मर नहीं सकता, और ये शरीर तो मरा हुआ है, इसके लिए रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। बस कमल का उपहार देकर के अपनी आत्मा तक को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। इस शरीर की रक्षा करना और न करना, अब इसके लिए हमारी कोई भी प्रार्थना नहीं, बस आपके चरणों में अपने हृदय रूपी कमल को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। अर्थात शरणागत हो गया। जो ही शरणागत हो गया उसकी ये जो वासना थी जे प्रभु मैं आर को था, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, तब तक भगवान नहीं आएंगे। वो तो जानते हैं भगवान, भगवान को आत्मज्ञान नहीं है कि ये शरीर तो मरा हुआ है, अर्जुन से तो सबको ऐसे ही मरवाई दिया, इसलिए शरीर की रक्षा के लिए जो कहता है उसको ज्ञान नहीं है, भगवान इसके लिए नहीं है। कपड़े हम बदल देंगे तो इसके लिए भगवान की क्या जरूरत है, इसलिए ये नहीं जरूरत है, हम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं और प्रभु हमें ग्रहण कर लें, अपना प्रेम दे दें, ये सबसे बड़ी अपनी सेवा। इसलिए उसने आत्मसमर्पण के बहाने कमल को भगवान के चरणों में अपना हृदय समझ करके हम गुरु जी के चरणों में, भगवान के चरणों में पुष्प किस लिए देते हैं? पुष्प जैसे मधु, कोमल, मृदु और सौरभ युक्त, सुगंध युक्त होता है, ऐसे ही हमारा ये हृदय है। हृदय का प्रतीक ये कमल अथवा कोई फूल है, वैसे ही कोमल है। मैं अपने हृदय को आपके चरणों में समर्पित, किंतु हम समर्पित करके भी समर्पण नहीं करते। ताला चाबी अपने हाथ में रखते हैं, दे दिया हृदय, और तभी सुख दुख का मालिक मैं बैठना बैठा, काम क्रोध लोग मैं मोह करता हूं अपने शरीर के लिए। तो देना क्या हुआ, जो भगवान के चरणों में शरणागत हो गया, अब उसके लिए अपनी चिंता क्या रह गई? जो फिर भी अपनी चिंता करता है तो वो शरणागत ही नहीं हुआ। इसलिए गुरु के चरणों में और भगवान के चरणों में शरणागत हो गया यदि कोई व्यक्ति, अब अपना क्या रह गया? एक गाय को बेच दिया, गाय उसके खूटे पर चली जाती है, खिलाता है वो खा लेती है, दूध मांगता है दूध दे देती है। ऐसे ही हम भी यदि भगवान के शरणागत हो गए, हमारा अब क्या बाकी रहा? किंतु हम कहने पर भी शरणागत नहीं होते, यही गड़बड़ी है। इसलिए हम शिष्य माने क्या, गुरु का शरणागत हो गया। तीन प्रकार के शिष्य होते हैं, उसमें तीन अक्षर होते हैं से व क, जो गुरु की इच्छा जान करके बिना कहे हुए ही उनकी प्रसन्नता के लिए उनके इच्छा मुताबिक काम कर देता है, सेवा करता है, उसको कहते हैं सेवक। जो कहने पर करता है, ऐ पानी लाओ पानी ले, ऐ इधर ये काम करो तो वो कर दो, ये मध्यम कोटि। और तीसरा होता है, तीसरे प्रकार के सेवक हमारे जैसा, मैं मेरे जैसा, गुरु जी ने कहा जी ये करो, उनको बुला लाना, तो जरा यदि वो घर में मिले नहीं मिले तो गुरु जी मैं क्या करूंगा, पहले से ही बहाना आरंभ किया, यदि न मिले तो, और यदि मिल भी गया और यदि न आए तो मैं क्या करूंगा, तरह तरह की शंका करता है। तो ये क्या है, सेवक में से सब से उसको निकाल दो तो बर रह गया क्या, बक रह गया। जैसे बगला होता है ना, नाम मात्र का शिष्य या नाम मात्र का सेवक, सेवक नहीं। इसलिए ऐसा होना चाहिए, उनके मन को देख करके उनकी अभिलाषा क्या है समझ ले, और समझ करके वैसे काम करें। गुरु जी और किसी कार्य से प्रसन्न नहीं होंगे, वो कैसे प्रसन्न होंगे? उनकी इच्छा देकर के भगवान की सेवा करें, वैष्णवों की सेवा करें, अपना अभिमान अहंकार सब कुछ यदि छोड़ करके भगवान की सेवा करें, इससे बढ़कर के गुरु जी और किसी काम से प्रसन्न नहीं होंगे। इसमें चार प्रकार के जो कहे गए हैं, आर्त, ध्रुव जी कहलाते हैं अर्थार्थी, अर्थ के लिए, संपत्ति के लिए उन्होंने भगवान का भजन किया। और शौनक इत्यादि ऋषि थे, वो जिज्ञासु थे, तत्व जिज्ञास करने वाले। और ज्ञानी कहा जाता है सनक सनंदन सनातन। जब तक उसमें किसी प्रकार का दोष त्रुटि या कषाय रहेगा तब तक भगवान नहीं मिलते। ध्रुव में इनमें आत्मा ने अपने शरीर की रक्षा करने के लिए आरती थी, ध्रुव में अर्थ लालसा थी, वो था कषाय दोष, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। शौनक इत्यादि तरह तरह की जिज्ञासा थी, तब तक नहीं मिलेंगे। और सनक सनंदन सनातन इनकी ज्ञान की इच्छा थी। ब्रह्मा जी ने देखा ज्ञान की इच्छा से नहीं मिलेंगे, यदि भक्तों को कृपा इन पर हो जाए और उनमें भगवान की सेवा की वृत्ति यदि जग जाए और ज्ञान रूपी दोष मल दूर हो जाए तब तो भगवान मिलेंगे। इनको कहते हैं चारों के कषाय। जब इनकी आरती दूर हो गई और मेरे शरीर की अब जरूरत नहीं है, हमारा तो एक आत्मा का और शरीर है, उससे भगवान की सेवा करेंगे, ये भावना आई तो उन्होंने भगवान के चरण में आत्मसमर्पण कर दिया। तब वो भगवान ने दर्शन किया। ध्रुव की धन की लालसा समाप्त हो गई। अरे मैं तो कांच कहीं खोज रहा था, कांच के टुकड़े मिल गए हैं, कांच की टुकड़े खोजते 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 चिंतामणि हाथों में लग गई और मैंने चिंतामणि को खो दिया और वही कांच ही को पकड़े रह गया। अर्थात तू मैं कांच खोज रहा था, कांच मने ठीकरे, रुपए पैसे संपत्ति राज्य, भगवान नारद जी की कृपा से मिल गए। और इन भगवान से मैंने वही लालसा की और भगवान ने कहा जाओ 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगो। मैं इसी में बदला है, हमारा जीवन नष्ट हो गया। जब यह भाव आया तो भगवान के शरणागत हो गए, तो फिर भगवान ने उनकी करुणा पर कर करके अपना ध्रुव लोक किया। इसी तरह से समझो, जब चार प्रकार के लोग जगत में ऐसे कौन हैं जो आर्त नहीं है, दुखी नहीं है, धन की लालसा किसको नहीं है, किंतु भगवान मिल जाते हैं? नहीं मिलेंगे। भक्तों की कृपा होनी चाहिए और उनका यह दोष दूर होना चाहिए, तभी भगवान मिलेंगे। इसके में एक शिक्षा। दूसरी बात, भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छल दिया। असुर लोग किसको कहते हैं? जो लोग संसारिक वस्तुओं को चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते, उनको कहते हैं असुर। गौ भूत सर्गे लोकेश मीन दैव आसुरे वच विष्णु भक्त भवे दैव आसुर। जो लोग भगवान की सेवा करते हैं वो लोग हैं देवता, और जो लोग उनकी सेवा नहीं करते उसके विपर्यय असुर। असुरों को दे दिया वो सुरा लेकर के जो उत्पन्न आए थे बारुणी, नहीं भाई बारुणी से उनको मोहित कर दिया, सबको पिला दिया। अब अमृत निकला मोहिनी रूप धारण करके, एक मंद मुस्कान से, स्मित मुस्कान से असुरों को मोहित कर दिया और देवताओं को सब पिला दिया। अब शंकर जी को यह हुआ कि हमको तो पहले उन्होंने विष पिला दिया, मैं विष पी करके और वहां से चला आया। हमने सुना कि उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया था और असुरों को ठग करके देवताओं को अमृत पिला दिया। भगवान से मिले वो, बोले प्रभु मैं वहां से चला आया विष पान करके, फिर उसके बाद में आपने मोहिनी रूप धारण किया, मैं जरा मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहता। उन्होंने समझा दिया भाई बेटा ऐसा मत कर, मोहिनी रूप देखना उचित नहीं है, इसको देख करके सभी लोग मोहित हो जाते हैं। वो माने नहीं शंकर जी। शंकर जी समझते हैं कि मोहिनी रूप देख करके मैं नहीं ठगूंगा, मैं मोहित नहीं होऊंगा। अरे हमने तो कामदेव को जला दिया, हमारे अंदर में कुछ है ही नहीं है जो माया हमको मोहित कर। प्रभु जी ने कहा जी बहुत मना किया, वो माने नहीं। अच्छी बात है, देख लेना कभी। अब तो मैं चल रहा हूं और साथ ही साथ प्रभु वहां से अंतर ध्यान होकर के सुंदर मोहिनी का षोडशी का रूप बने, सुंदर बगीचा एक हो गया, उसमें परम किशोरी रूपवती बनकर अर्ध नग्न अवस्था में कमल के फूलों को अपने हाथों से ऐसे करते हुए ऐसा भाव किया जैसे कि शंकर जी एकदम, ये शंकर जी कौन है, माया से अतीत हैं, तो भी अपनी रूप मोहिनी रूप से उनको ऐसे मदांध कर दिया। पार्वती जी ने देखा जे शंकर जी तो मोहित हो गए, उनको पकड़ने के लिए दौड़े। पार्वती जी ने उनको पकड़ा, अरे ये क्या कर रहे हो, अरे जरा ठहरो तो। वो कहां उनको झटका दे करके उनके पीछे चले और वो भाग चले और ये पीछे से चल पड़े, त्रिभुवन में उनको नचा दिया। फिर जब त्रिभुवन में नचा करके वहां पर ले आए तो उन्होंने अब हंस दिया और हंसते ही मोहिनी रूप समाप्त। शंकर अरे ये क्या, ये क्या मैं हो गया, वो तो मोहिनी रूप विश्व के लिए इस संसार में स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्रियां, दोनों ये मोहिनी रूप हैं। भगवान ने ऐसी माया की है, सहज ही हम भगवान का भजन नहीं करते, ऐसे बना करके रख दिया है घर 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 चारों तरफ में, जिधर जाओ माया का रूप, पुरुष के लिए स्त्री। भगवान के भजन में यदि कोई बाधा चीज है तो ये है, जिसको भगवान का भजन करने जाना है, जो कि से भक्तों से प्रार्थना करें वो तुम्हारे इस भाव से दूर कर देंगे, अन्यथा भजन सदन सब चौपट हो जाएगा। भगवान ने कैसी चीजें ये सब तैयार की है, ने? क्रोध लगा दिया, काम लगा दिया, मोह लगा दिया, बस क्षण भर में इसके वशीभूत हो जाते हैं और कहां भगवान और कहां भक्ति, कहां गुरु, कहां वैष्णव, कहां ये सब कुछ खुल जाता है। इसलिए खूब सावधान रहो, मोहिनी के चक्कर में हम लोग न फंसे, और नहीं तो चुटकी बजाते ही हमारा कोटि कोटि जन्म चला जाएगा उनको भोगने में ही। शंकर तो थे भगवान के कृपा पात्र, थोड़े देर में संभल गए, किंतु हम लोगों के समझ संभलने में न जाने कितने कोटि अरब खरब जन्म चले जाएंगे, इसलिए साधु सावधान। तीसरी बात, अभी ये बलि महाराज जी, बलि महाराज जी को के यहां वामन देव पधारे, उन्होंने त्रिपाद जमीन मांगी, तीन हाथ जमीन, बड़े चतुर, छल कैसे किया जाता है जानते हैं, किंतु एक बात है, वैष्णवों का क्रोध और वैष्णवों का स्नेह दोनों एक होता है ना? जिस अगस्त ऋषि ने उस हाथी को, मैंने कौन राजा इंद्रद्युम्न को अभिसंपात दिया, जाओ तुम हाथी होकर के जन्म लेगा, तुमने सम्मान नहीं किया। अब उनका ये क्रोध, नारद जी ने जमलार्जुन को नलकुबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्रों को अभिसंपात क्रोध में होकर के दे दिया, जाओ तुम वृक्ष होकर के जन्मो, उनका क्या हुआ, इसका फल क्या हुआ, भगवान को बहुत ही जल्दी पा गए। तो वैष्णव का क्रोध ही यदि ऐसा है कि भगवान को मिला देता है, तो ये कितनी दया का सूचक है। तो उन भगवान को क्या बतलाऊं, भगवान बलि से राज्य छीन कर और देवताओं को देने आए थे, न उनका कुछ दूसरा उद्देश्य था, दूसरा उद्देश्य क्या, बलि महाराज ने, प्रहलाद महाराज हमारा परम प्रिय भक्त है, उसने आत्मसमर्पण हमको किया है, संसार का कोई भी चीज भगवान ने कहा जो वर मांगो, प्रहलाद कहे प्रभु मैं बनिया नहीं हूं, मैं एक तौल में घाटा दे दूं, सुनार होकर के रगड़ने के बहाने कुछ सोना ले लूं, मैं कुछ भी नहीं चाहता, आप ऐसी करें कि मैं बनिया की नहीं छोड़ करके मैं सचमुच आपका सेवक बन जाऊं। आप ऐसी कीजिए कि हमारी मांगना की अभिलाषा दूर हो जाए। इसको कहते हैं भक्ति। प्रहलाद महाराज जी देखिए करें हमारी मांगने की यदि कुछ लालसा भी हो, प्रभु नहीं 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 तुम्हारे अंदर में मांगने की कोई अभिलाषा ही नहीं, फिर भी मेरा दर्शन अमोघ है, तुम कुछ मांग। प्रहलाद महाराज जी बड़े दयालु, उन्होंने देखा हमारे लिए प्रभु ने क्रोध किया और हमारे पिताजी को मार दिया, जैसे तैसे अभी हमारे पिता बने हुए हैं, इनका तो जरूर कल्याण होना चाहिए। कहे प्रभु उन्होंने मेरे लिए आपको कष्ट दिया और हमको भी कष्ट दिया, इसलिए इनके दोषों को क्षमा कर दी जाए और इनका उद्धार किया जाए। प्रभु अरे तुम्हारे कुल में आने से 21 पीढ़ी के अंदर में ये तो पहली पीढ़ी के हैं, इनका उद्धार हो गया है, तुमको इसके लिए चिंता मत करो और कुछ मांगो। तब अंत में वो बोले जब प्रभु जब आप देने ही पर जब लगे हैं तो ये दीजिए कि जगत के लोग आपकी का भजन न करके बहिर्मुख होकर के बड़े दुखी हैं, अब ये जितना उनका दुख है पृथ्वी के जितने लोगों का सब दुख मेरे ऊपर में आ जाए और मेरी आपकी सेवा करने से भक्ति करने से जो कुछ मुझे मिला है इसके द्वारा उन सब का कल्याण होकर के आपके उच्च चरणों में सेवक बनकर के आ जाए। प्रहलाद महाराज जी बड़ी महाराज वो हाँ नृसिंह भगवान बोले प्रभु अब बेटा मैं हार गया तू जीत गया, इतना तो संभव नहीं कि जगत के जीव जितने हैं सब अभी एकदम बैकुंठ चले जाए, किंतु हां हमारी तुम्हारी ये जुगाथा हुई, इस लीला का जो कोई भी प्रेम के साथ में वर्णन करेगा वो जरूर हमारे धाम में आ जाएगा, उसको विशुद्ध भक्ति होगी, ये मैं तुम्हें पढ़ देता। तो प्रहलाद महाराज जी ऐसे जो कि वैष्णवों के एक माने अंतिम सीमा है, ऐसे वैष्णव कुल में बलि महाराज जन्मे हैं, अब वो स्वर्ग का राज्य या और सब चीजें हैं ये क्या चीज है, भक्ति की बाधा है, इसको भक्ति होनी चाहिए और हमने प्रतिज्ञा की है कि इसके ऊंचे ऊपर नीचे वाले सबका उद्धार करूंगा और उनको भक्ति दूंगा और बैकुंठ ले जाऊंगा, ये तो इसी राज्य में रह जाएगा देवताओं जैसा, जैसे बच्चा रो रहा है उसके हाथ में लोला दे दिया तो देवताओं को स्वर्ग का लोला दे दिया जो बजाते रहो झुंझुना और अपने सेवा काम में ले गई, इसलिए देवताओं को ठग करके वो स्वर्ग का राज्य दे देते हैं और उसी में वो लोग मत रहते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। एक बार भी इंद्र ने नहीं कहा मैं आप अपने चरणों की हमें भक्ति दे दी, उन्होंने कहा कि हमारे स्वर्ग की रक्षा, एक लोला है, एक विषय है संसार का, अनर्थ है कि ये बलि महाराज जी को लग गया, इसका हम कैसे उद्धार करें, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है इसके वंश की रक्षा के लिए, इसलिए उन्होंने किया छल से बल से कहा जिसे अच्छा ठीक है तुम तीन पैग हमको भूमि दे, मांगा जिस मुख से और जिस शरीर से, किंतु जब मापने का अवसर हुआ तो विराट रूप धारण कर लिया और विराट रूप से उसका सर्वस्व एक ही पग में ब्रह्मलोक तक और दूसरे पैर से समस्त पृथ्वी को और तीसरे पैर के लिए वो चाह ये और कोई स्थान नहीं। बलि महाराज ने कहा जी हमारा मस्तक नाप लो या हमारी पीठ नाप लो, इसका तात्पर्य क्या है, जब तक हम कुछ दूसरे चीज को दे देते हैं तब तक अपना कुछ बचा रहता है, फिर हरिश्चंद्र ने अपना राज्य दे दिया विश्वामित्र को, अभी उनकी स्त्री और बच्चा और वो बचे रहे, विश्वामित्र कहें अभी कल्याण इसका नहीं, अच्छा तुम 10,000 स्वर्ण मुद्रा दो। उसने कहा ऐ खजांची 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कोष से निकाल करके इस विश्वामित्र को दे दो। राजा अरे बड़ा मूर्ख, राज्य मेरा और कोष तुम्हारा, ये कोष भी तो मेरा है, अब बिना तुम्हारा ये कोष नहीं है, अब मुझे स्वर्ण मुद्रा ला, अब उनका मस्तक चकराया कि मैंने कोष और सब वस्तु कुछ राज्य दे दिया अब तो मेरे पास में कुछ है ही नहीं देने का, अब मैं क्या दूं? अब चिंता, पहले चिंता नहीं थी। मैं कहा जी अच्छा कुछ नहीं है, अच्छा तू अपने को तो दिया नहीं, अभी अपने को और अपना जो कुछ है वो अब बाकी वो अब दे। काशी में गए डोम के यहां, अपने को बेचा, ब्राह्मण के यहां अपनी पत्नी और उसको भी बेच दिया, अब पत्नी भी नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा, तो भी मैं राजा हूं। ये मेरा लड़का था अभी हवर, ये मेरी स्त्री का भाव नहीं गया, लड़के को सांप कटवा दिया अब मर गया, अब तुम्हारा लड़का कौन? इस तरह से एक एक करके छुड़ाते गए। जब संसार का सब कुछ अपना, मैं और मोर तोरते माया, ये जान छूटी तब तक फिर भगवान का वो शरणागत होगा, ऐसे कैसे होगा? बलि महाराज के ऊपर मैं ये प्रचुर कृपा की, उनका सब कुछ शरीर तक ले लिया, अब कुछ नहीं रह गया, वो अपने को भी समर्पित भगवान के चरण में कर दिए, तब उनको उन्होंने ग्रहण कर ली। ये भगवान की दया है। इन भगवान की दया को समझना भी साधारण बात नहीं। भागवत का तात्पर्य है भगवान की दया को समझो। उन्होंने हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मारा नहीं, शिशुपाल को मारा नहीं, रावण को नहीं मारा, वो मारते नहीं, वो तो सुदर्शन दे करके उसको सुदर्शन को हटा करके सुदर्शन करते देते हैं, अपनी भक्ति में लगा लेते हैं, हम समझते नहीं है। ये समझाना ही भागवत का कार्य है, क्योंकि पुराण रूपी सूर्य है श्रीमद भागवत, तत्व ज्ञान के लिए सूर्य है, इसलिए ऐसी तत्व दे करके और भक्ति दे करके जगत का कल्याण करते हैं। इसलिए हम लोग इन कथाओं के भीतर गूढ़ रहस्य में हम लोग यदि प्रवेश करें तो भागवत का श्रवण हो जाएगा, और नहीं तो कहें महाराज जी रुक्मिणी का विवाह कब होगा? मैंने पूछा जब क्यों क्यों तो रुक्मिणी के विवाह में तो सब लोग लेकर के अलंकार कपड़े टपड़े ये सब चढ़ाते हैं ना। मैंने कहा जैसे भाई हमने तो नहीं सुना जब रुक्मिणी के विवाह में ऐसा होता है, प्रसंग आने पर ऐसा तो नहीं। सर्वस्व अपना दे दो भगवान के चरण, लौकिकता नहीं। हो सकता है कि पंडित लोग रुक्मिणी का विवाह करके और उसमें अपने के लिए अर्थ ले लेते हो, हम लोगों का ये तात्पर्य। यदि आप लोगों को थोड़ी सी भी भक्ति हम लोग दे सकें और भागवत का तात्पर्य आपके हृदय में हम लोग दे सकें, हम समझे कि आज हम लोगों का भागवत पढ़ना हमारा सार्थक। यदि आप लोगों का क्रोध काम द्वेष मोह संसार से आसक्ति थोड़ी सी भी यदि गई, कोई वासना नहीं रही, हम समझे कि आज आप लोगों का भागवत श्रवण करना यथार्थ साथ। आप लोग भागवत के अर्थ को हृदयंगम करें, इसके रहस्यों को जाने और भगवान के चरणों में आप लोग बेच करके, भागवत का एकमात्र तात्पर्य है गोपी प्रेम और दूसरा नहीं। ये सब तो साधारण बातें हैं, जिसको ब्रज के गोपियों के कृष्ण की सेवा के प्रति उनकी जैसी भावना और वृत्ति है, इसके प्रति लोप हो गया भागवत को सुन करके, उनका जन्म जन्मांतर सफल हो गया, यही भागवत का चरम पुरुषार्थ और फल है। आज यही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, अब कीर्तन करके और आरती होगी आप लोग सभी लोग।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
भागवत नौवें स्कंद की परम मधुर और पावनी कथा का समूह। मैं सबसे पहले दुर्वासा ऋषि जी को प्रणाम करता हूं। वो हम सबके वंदनीय हैं। जैसे कोई उपेक्षित कोयले की खान से कोहिनूर हीरा को प्रकाशित कर दे, ऐसे शुद्ध भक्तों को ये प्रकाशित करने वाले हमारे दुर्वासा जी। दुर्वासा जी नहीं होते तो एक गृहस्थ भक्त जो भगवान के अत्यंत भक्त हैं, दुर्वासा को कोई भी नहीं जानता। अम्बरीश महाराज जी, दुर्वासा जी के कृपा से ही हम लोगों ने उनको पहचाना। दुर्वासा जी हैं अत्रि ऋषि के पुत्र और अनुसुईया जी के पुत्र। ये शंकर जी के अवतार हैं। शंकर जी भगवान के अत्यंत परम भक्त हैं। ऊपर से उनको क्रोध दिखता है या ब्रह्मज्ञानी दिखते हैं, योगी दिखते हैं, किंतु उन्होंने अपना स्वरूप आच्छादित कर रखा है। यथार्थ में भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, इसलिए उनका कार्य है जगत में जो उपेक्षित भक्त लोग हैं किंतु भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं, उनको जगत में प्रकाश करना। इसलिए उन्होंने अम्बरीश को खोज निकाला। अम्बरीश महाराज देखने में एक साधारण गृहस्थ भक्त जैसे लगते हैं। एकादशी व्रत कर रहे हैं, घर में अपने हाथों से ठाकुर जी की पूजा करते हैं और अपना राज्यपाठ अपने मंत्रिपरिषद और पुरोहितों के द्वारा कराते हैं। इस तरह से आदर्श भक्त हैं। इन्होंने उनको प्रकाशित किया कैसे आप जानते हैं, अभी उनकी कथा हुई। इसलिए यही दुर्वासा ऋषि जी दुर्वा आशा दुर्वा के रस को ही केवल पान करते हैं और कुछ नहीं खाते। योग तपस्या की उनकी बात आप लोग जानते हैं, जिसको जो कह देते हैं वही हो जाता है। इस लीला के पश्चात उन्होंने दिखलाया पांडवों के यहां, पांडवों को प्रकाशित कैसे किया। दुर्योधन के कहने से पांडवों के पास में गए काम्य वन में और वहां जब ये द्रौपदी खा लिया और अपनी सूजी की दी हुई थाली उसने माजर दी, यदि वो नहीं माजती है विश्व ब्रह्मांड के जितने भी लोग आ जाएं सबको खिला करके तृप्त कर सकती है, किंतु स्वयं खा करके थाली को माज करके उलाट देगी, अब कुछ उसे नहीं मिलने का। तो उस दिन दोपहर का समय हो गया, खा पी करके उसने थाली माज दी और उसे उलाट करके रख दिया। और इतने में दुर्वासा ऋषि कितने हजार शिष्यों को लेकर के और वहां पर उपस्थित हो गए। आने पर उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिलाओ। इन लोगों ने देखा कि हमारे पास सब कुछ नहीं, द्रौपदी ने खा भी लिया है। इन्होंने समय को टालने के लिए कहा आप जरा स्नान करके अभी आ जाइए, अभी आपको पूर्ण भोजन मिलेगा। वो स्नान करने गए, इतने में इन लोगों ने चिंता की कि अब क्या किया जाए। उन लोगों ने द्रौपदी से कहा तुम्हारे वो सखा हैं, हमारी बात सुने या न सुने किंतु तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे, तुम उनको कहो प्रार्थना करो वो हमारी इस विपत्ति से रक्षा करें, अन्यथा सबको अभिसंपात से जला करके भस्म कर देंगे। द्रौपदी ने प्रभु को पुकारा, वो मुस्कुराते हुए दूर तो थे नहीं कहीं, बस झट प्रकट हो गए। द्रौपदी मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाओ। ये प्रभु यही तो समस्या है, कितने हजार शिष्यों को लेकर के दुर्वासा हैं, अभी आने वाले हैं, और यदि मैं नहीं खिला सकी तो हमारे पांचों पांडवों को हमारे पतियों को ये जला करके भस्म कर देंगे, और फिर वही आप भी मांग रहे हैं भोजन, हमारे पास तो रहता तो कोई बात नहीं थी, मेरे पास में कुछ नहीं। अरे अपनी बटलोई तो ले आना, अरे उसे मांग करके मैंने उलाट करके रख दिया, ले तो आओ तुम, देखो तो। मंगवाया और उसको बड़े अच्छी तरह से देखा, उसमें कोई साक का तिनका लगा हुआ था, उन्होंने अपने नखों से उसे लिया और मुख में ऐसे देकर और पानी पिया भरपेट, तृप्तोस्मि, जहां कहां सब जगत एकदम तृप्त हो गया। जस्मिन तृप्ते जगत तृप्त, भगवान के तृप्त होने से सभी का हो जाता है, इसलिए वो उन ऋषियों का पेट फूल गया और उनको भेकार आने लगी। इतने भीम को गदा लेकर के कृष्ण ने भेजा जो उन ऋषियों को बुला लाओ, इनकी गदा दे करके सोचा अभी कहीं अम्बरीश से पाला पड़ा था, उनसे ये बड़े भक्त लोग पांडव लोग कहीं हमारी गड़बड़ हो जाए और हमें उसमें तो सुदर्शन चक्र ने जलाया नहीं, इस बार अब रक्षा नहीं, सब अपने चेलों को साथ में लेकर के वहां से ब्रह्मलोक को वहां से उतर के भाग करके चले गए। भगवान अपने भक्तों की इसी प्रकार से रक्षा करते हैं। ये अम्बरीश, ये दुर्वासा जी यथार्थ में यदि कोई अपराधी होते तो जिस समय भगवान का चक्र है उसी समय जला देता कि नहीं? सुदर्शन चक्र से कोई भाग करके अपनी रक्षा कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। कहां जाएगा वो विश्व ब्रह्मांड में एक क्षण के अंदर में, मन से भी गति उनकी तीव्र, और ये दुर्वासा भक्ते हुए चले चले जा रहे हैं और इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। बतलाओ तो इसमें जरूर कुछ रहस्य है। वो रहस्य ये परम भगवत भक्त हैं, सुदर्शन चक्र भी इनको नहीं मार सकते, इसलिए वो दिखला रहे हैं, उनको प्रकाश करने के लिए आए अम्बरीश को, इसलिए ऐसी बात हुई। यहां पर भी ऐसे ही हुई, इनको प्रकाश किया। दुर्योधन जितना भी जो कुछ करे उसका ध्वंस अनिवार्य है, वैष्णव से कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए और नहीं तो अनिवार्य है उसका। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं, अभी ये कथा हुई नहीं, ये जमुना में जो पूजा कर रहे थे सौभरी और अम्बरीश का, सौभरी 10,000 वर्ष तक तपस्या की, नंग धड़ंग हो करके जल के अंदर में ठंडे जल में रह करके तपस्या कर रहे थे। जिस तपस्या में भगवान का कोई संबंध नहीं, भक्ति का कोई संबंध नहीं, उस तपस्या से भगवान नहीं मिलते। आराधितो यदि हरि तपसा तथा, नाराधितो हरि तपसा ततः किम्, अंतर बहिर्यदि हरि तपसा ततः किम्, नान्तर बहिर्यदि हरि तपसा ततः किम्। यदि भगवान की आराधना हो गई तो बेकार की तपस्या की क्या जरूरत है, और यदि भगवान की आराधना नहीं हुई कृष्ण चंद्र की तो उस तपस्या से क्या मिलने वाला है? यदि अंतर और बाहर में हरि हैं तो तपस्या करके और अधिक क्या लाभ होगा, और यदि भगवान ही भीतर और बाहर नहीं है तो उस तपस्या से बेकार का कुछ भी लाभ नहीं है। इसलिए तपस्या कर रहे हैं भगवान से और भक्तों का, भक्ति का कोई भी संबंध नहीं है। उन्होंने एक मछली के खाने से गरुड़ को भी संपात कर दिया। जाओ, यदि कभी यहां आया और मछली पकड़ी तो तुम्हारा सिर चकनाचूर हो जाएगा, उड़ जाएगा। गरुड़ जी भी हंस करके रह गए, कहे इसके अभी इसका अभी संपात हमारे ऊपर में क्या लगेगा। तभी ब्रह्मा का दिया हुआ वर को रक्षा करने के लिए फिर वहां नहीं गए। वैष्णव लोग कभी किसी का अपराध नहीं लेते, किंतु उनकी चरण की जो रजे हैं वो क्षमा नहीं करती। एक तो प्रभु नहीं क्षमा करते वैष्णव के चरणों में यदि अपराध हो जाए, और यदि भगवान ने क्षमा भी कर दिया तो उनके चरण से जो रज निकलती हैं वो फल कभी नहीं क्षमा करेंगे। इसलिए वैष्णव से खूब सावधान रहा जाए। उनके अंदर में कामना जल उठी और उनको विवाह करने की लालसा हुई। अंत में मंदाता के 50 लड़कियों के साथ में शादी की, किंतु वैष्णव लोग बड़े कृपालु होते हैं। अभी मैंने बतलाया था उनका शाप भी अनुग्रह का कारण बन जाता है, क्रोध भी उनका अनुग्रह का कारण बनता है। यदि ऐसे भक्त लोग यदि क्रोध करके किसी को अभी संपात भी दे दिया और उनका कल्याण नहीं हुआ तो उनका क्रोध बेकार, ऐसा कैसे जाएगा। इसलिए गरुड़ जी देखा जैसे जैसे तैसे ये वृंदावन में आराधना करता था, इसका कल्याण होना चाहिए। इसलिए 10,000 वर्ष की उम्र पहले से 10,000 वर्ष तपस्या और 10,000 भोगों को भोगा। इसके बाद उन्होंने कहा जरा संध्या कर लू, संध्या कर लू। पत्नियों ने कहा अरे 30,000 वर्ष निकल गए और तू संध्या करेगा? फिर सचमुच में हमारे जीवन हुआ, जीवन का संध्या काल उपस्थित हो गया। हमने जीवन को बेकार हमने बर्बाद कर दिया, बस घर गृहस्थी छोड़ करके और वृंदावन में पुनः आकर के और उन्होंने भगवान कृष्णचंद्र जी की आराधना की और अंत में भगवान को प्राप्त। इसलिए वैष्णवों का अभिसंपात भी वैसा ही होता है। और हुआ क्या, उन्होंने गरुड़ को जो अभिसंपात दिया था कि मछलियां बच जाएं, उनको आश्रित करके रक्षा की। मछलियों का क्या हुआ, जिन्होंने इनसे उलाहना दिया था वहां पर आ गया काली और अपने विष से भर दिया तो मछलियां भी सब समाप्त हो गई। ऐसे दोषी व्यक्ति का, अपराधी व्यक्ति का आश्रय लेने से वो दोनों मरते हैं, जो भगवत अपराधी हूं। ऐसे व्यक्तियों का आश्रय नहीं लेना चाहिए। इसलिए न तो वैष्णव की निंदा करनी चाहिए अपराध, न उनके भक्तों का भी अपराध करना चाहिए, न वैष्णव विद्रोही है उनका आश्रय भी लेना उचित नहीं, पक्ष कर लेने से उनका भी विनाश हो जाता है। इसी प्रकार से हम उसे शिक्षा पाते हैं। अब उसे हम चलते हैं, रामचंद्र जी का चरित्र सुनाया संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, बहुत सुंदर रूप में। रामचंद्र जी की लीला बड़ी अपूर्व है और तब जो सुना हम केवल एक उनका थोड़ा सा चरित्र वर्णन करके मैं आज अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण को लेकर के चित्रकूट पर पहुंचे हैं। भरत बेचारे को कुछ पता नहीं, ननिहाल गए हैं, वहां से घर में आए लौट, सारी अयोध्या सुनी एकदम। कोई उनके स्वागत के लिए नहीं आया। जब वो नगर में घुसे सारी नगर उजड़ी पुड़ी, विधवा की भांति दिखाई पड़ी। कहीं भी जन कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ा। सोचा जी क्या बात हो गई, आज अयोध्यापुरी विधवा कैसे हो गई और हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं आया, ये क्या बात। किस प्रकार से वो अंदर महल में गए, वहां पर शून्य शान सब देखा, लोगों ने इनको देखा और अपना मुख फिरा लिया। आज तक लोग मेरा इतना सम्मान करते थे, आज अपना मुख फिरा क्यों लिया। और भीतर में गए, देखा महारानी कैकई मंथरा के साथ में दरवाजे पर खड़ी हैं। आरती उतारने के लिए। ये गए तो उनका मस्तक सूंघा और गले से लगाया, समझे, माताजी आपके शीर का सिंदूर कहां गया, आपने सफेद कपड़े क्यों पहन लिए, क्या बात हो गई, और महाराज यहां पर हमको स्नेह करने के लिए दरवाजे से नहीं आए, हमारे भैया राम को पता होता वो जरूर आते, राम नहीं आए, क्या बात हुई, कौशल्या तो तुमसे पहले ही हमको अभिवादन करने के लिए आती, तो वो भी नहीं है, क्या बात हो गई, बेटा कुछ कोई बात नहीं है, महाराज दशरथ स्वर्ग सिधारे और तुम्हारे भाई वन को गमन किए, लक्ष्मण सीता भी उनके साथ में गई, ऐसा क्यों हुआ, चलो ये सब बातें घर में बतलाएंगे, नहीं यहीं पर बतलाओ ये क्या हुआ। तो उन्होंने सब संक्षेप में, बेटा तेरे लिए मैंने ये सब कुछ किया, आज तेरे लिए मैं विधवा हुई, तुम अब यहां का राज्य भोगो, अब वो 12 वर्ष तक जंगल में ही रहेंगे, 14 वर्ष तक जंगल में रहेंगे, तब तक तुम्हारा सुदृढ़ राज्य होगा, मेरी छाती जुड़ा जाएगी। अच्छा, बस उसी समय में शत्रुघ्न जी ने कुबड़ा को पीटा, उन्होंने किसी प्रकार से रक्षा की। इसके बाद में कहा कि तुम उसको और माता नहीं कहूंगा, जिनके प्रिय नाम अवैधे तजिए कोटि बैरी सम यद्यप परम शनि तजव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी बलि गुरु तजव कंस ब्रज बनितन भय जग मंगल भय। आज से तू मेरी माता नहीं, हमने संबंध एकदम समाप्त कर दिया, आज से तू मुझे अपना पुत्र मत कहना और मैं तुम्हें मां नहीं कहूंगी, आज से तुम महारानी कैकई मेरे लिए। उसके हृदय में वज्र पड़ा। इसके बाद में उन्होंने अपनी चतरंगड़ी सेनाली वशिष्ठ जी को लिया, कौशल्या जी को, सुमित्रा इत्यादि माताओं को लेकर के चित्रकूट के लिए चले। कैकई रोने लगी, कौशल्या के चरण में गए, मुझे भी भरत से कह करके ले चलो, मैं अब तुम्हारी दासी के रूप में रहूंगी, तुम हमारी रक्षा करो। उन्होंने भरत से कह करके उसको भी ले लिया। भरत जी वहां पर पहुंचे, सबके साथ में पहुंचे। रामचंद्र जी ने कौशल्या वशिष्ठ जी से कहा, आप लोग आदेश देती हैं राम को, राम जरूर लौट जाएंगे। कौशल्या जी ने, मैं कैसे आदेश दे दूं, मैं नहीं आदेश दे सकती, मैं जानती कि तुम्हारा पक्ष ठीक है और मैं जानती हूं कि राम का भी पक्ष ठीक है, मैं कैसे राम से कहूं जैसे तुम लौट जाओ, इसलिए मैं नहीं कर सकती। वशिष्ठ जी ने भी यही बात कही। उन लोगों ने कहा, यहां पर तुम धर्म के धुरीण हो, आदर्श व्यक्ति हो, तुम्हारा जैसा धार्मिक व्यक्ति पृथ्वी में पैदा नहीं हुआ होगा, भूतों न भविष्यति, और रामचंद्र जी मर्यादा के एकदम सागर हैं, रामचंद्र जी की मर्यादा नहीं चल सकती, अब दोनों विषय में श्रेष्ठ हो, मैं ऐसा नहीं कह सकती रामचंद्र जी को, और मैं तुम्हें भी नहीं कह सकती। भरती ने कहा, जब क्या मैं गलत रास्ते पर हूं, मैं तो समझता हूं तुम्हें ठीक, हां तुम भी ठीक है, वो भी ठीक है। वशिष्ठ जी का उन्होंने नहीं कहा, मां कहा। अंत में बड़ी भारी सभा बैठी और उसमें महाराज जनक पधारे। जनक को यह भार दिया गया कि आप जो उचित है निर्णय दीजिए। भरत कह रहे हैं कि अयोध्या का यह साम्राज्य रामचंद्र जी का, वो संभाले, और रामचंद्र जी कहते कि नहीं, भरत राजा हो, मैं अपने पिताजी का वचन पालन करने के लिए आया हूं, ये पालन करूंगा। सब बड़ी भारी ऋषियों की सभा बैठी, उसमें सभी लोग आए, कैकई भी आई, सब लोग आए। उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया, महाराज जनक जी ने, और ध्यान करके बोलते हैं, भरत तुम्हारा प्रेम जगत में एक आदर्श है, और राम का या मर्यादा का जो भाव है धर्म पालन की, बहुत इससे बढ़कर के और कोई चीज नहीं, वो तो हिमालय की भांति है, जो तस्य मस नहीं हो सकता, और
किंतु तुम्हारे प्रेम में वो डूब गया। जैसे समुद्र में पहाड़ डूब जाता है, उसी तरह से तुम्हारे प्रेम में रामचंद्र जी की मर्यादा भी डूब गई। जहां पर प्रेम होता है वहां पर मर्यादा का ये बंधन होता है, वो टूट जाता है, बिखर जाता है, उसमें डूब जाता है, मर्यादा वहां पर टिक नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे प्रेम के मारे, तुम्हारे प्रेम के आकाश समुद्र में राम का यह मर्यादा का हिमालय का भाव भी डूबने पर भी किंतु बहा नहीं, धारा में प्रवाहित नहीं हो गया, है अंदर पानी में किंतु वहीं पर रुका रहा। एक बात है, प्रेम में मर्यादा डूब जाता है, किंतु प्रेम की अपनी भी कुछ मर्यादाएं हैं। वो मर्यादा यह है कि प्रेमी व्यक्ति अपने प्रेमास्पद से विषय, प्रेम का जो विषय, उससे पूछे, उसमें उसके प्रति अपने हृदय के भावों को विलीन कर दे, उसका सर्वस्व रूप से हो जाए, और उसकी अभिलाषा क्या है, उसकी किस विषय में प्रीति है ये पूछे, और वैसा ही काम करे, अपने मनमानी मत करे। अर्थात रामचंद्र जी क्या चाहते हैं ऐसा कह करके उनकी सेवा करो, तब तो ये तुम्हारे लिए उत्तम बात होगी, तब तो तुम्हारा उनके प्रति सच्चा प्रेम है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकुल्यन कृष्णानुशीलनम उत्तम भक्ति। जब हमारे अंदर में कोई भी अभिलाषा नहीं रहेगी, प्रभु की इच्छा ही हमारी इच्छा है, उनको पालन करने की चेष्टा करनी चाहिए, अपनी कोई कामना वासना न हो, तब यह प्रेम होता है। यदि तुम अपने जिद पर अड़े रहो, तुमको जो अच्छा लगता है वही कराना चाहो राम से भी, तो ये तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ। तुम ये देखो जो रामचंद्र जी को क्या अच्छा लगता है उनसे पूछो और वैसा चलो। उन्होंने राजा जनक को प्रणाम किया, बोले आपने हमारी आंखें खोल दी, अब तक मैं अपने स्वार्थ की बात कहता था, ये रामचंद्र जी लौट आए और मैं सेवा करके मैं आनंदित हूं, किंतु हमारा आनंद प्रेम नहीं है, ये तो मेरा स्वार्थ था, अब मैं समझ गया, अब मेरा स्वार्थ छोड़ करके अब रामचंद्र जी की अभिलाषा पूर्ण करना ही हम मुझ सेवक का कर्तव्य है। इसलिए रामचंद्र जी के चरण में गिर पड़े, बोले जब भैया अब तक मैं स्वार्थ में अंधा हो रहा था, अब बतलाओ तुम क्या चाहते हो, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा ये राजा जनक जी ने तो कह दिया कि मैं हार गया और तुम जीत गए हो, वास्तविक में तुम जीत गए हो, ये राज्य मैंने ले लिया, अब ये तुम राज्य मुझे दे रहे हो, तुम्हारी प्रीति के लिए मैंने राज्य ले लिया, किंतु एक बात करो, हम दोनों मिलकर के पिताजी की भी आज्ञा का परिपालन करें, इसमें हमको और तुमको भी आनंदित होना चाहिए। इसलिए अब 14 वर्ष तक यह राज्य की थाती तुमको दे रहा हूं, तुम इसको राजा मत समझना, राजना तो मुझे समझना, और तुम इसकी सेवक होकर के और इसकी रक्षा करते रहना, तब मैं इसमें प्रसन्न हूं। बस उन्होंने उनकी खड़ाऊ ली और अपने सिर पर रख लिया और नंदी स्थान में आए और नंदी ग्राम में आए और खड़ाऊ को स्थापित कर दिया, जटाजूट रख लिया, रामचंद्र जी जैसे रहते थे ठीक वैसे ही रहने लग गए, वैसे ही फल मूल खा करके अपना जीवन निर्वाह करने लगे, और वहीं पर रामचंद्र जी की खड़ाऊ की पूजा करके उसे आदेश निर्देश लेकर के राज्य का संचालन करते। ये मेरा नहीं है, उसी तरह से हम लोगों को भी चाहिए, ये हमारा कुछ भी नहीं है, ये प्रभु का दिया हुआ है, हम सेवक बन करके उसकी रक्षा करेंगे और उनकी सेवा में इसको लगाएंगे, यदि ऐसी भावना होगी तो हमारा भी कल्याण होगा। ऐसे ही रामचंद्र जी के बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, समय पर हम लोग इसको वर्णन करेंगे। आज यहीं तक मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, अभी ब्रज कोकिला जी का कीर्तन एक कर करके तब फिर हम लोग आरती करें आरम्भ कीजिए।
पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च कृपा नमः भो विष्णुभ्यो नमो
नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्तिषे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीनानि पराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताजनमो यं प्रब्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमा। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणान्तिके। कल हम लोगों ने श्रीमद्भागवत नौम स्कंद समाप्त किया और दशम स्कंद की सूचना की। सुखदेव गोस्वामी ने नौम स्कंद के अंत में कृष्ण लीला चरित्र को दो एक श्लोकों में ही केवल बतलाकर परीक्षित महाराज जी श्रवण करके उनके सुनने का आग्रह कैसा हो रहा है ये देखने के लिए वहीं पर बंद कर दिया। ऐसा देख करके हमारे परीक्षित महाराज जी ने बड़े आग्रह से पुनः परिप्रश्न किया। उन्होंने बतलाया ये सोम और सूर्य वंश में भगवान लीलाएं की आपने कुछ कुछ वर्णन किया, अब मैं कृष्ण लीला को विस्तार से कुछ जानना चाहता। जहां पर कृष्णचंद्र स्वयं ब्रजेंद्र नंदन के रूप में, स्वयं अवतारी के रूप में, हरसो वैशाह के रूप में यहां पर प्रकटित हुए और उनके अंश से बलदेव प्रभु भी वहां पर आविर्भूत हुए हैं। संपूर्ण रूप से उनकी कथाओं का होना तो बहुत कठिन है, तो अभी आप कृपा करके जहां तक हो सके कुछ विस्तार पूर्वक इन लीलाओं इन लीला कथाओं को सुनाइए। विशेष करके धर्मशीलस्य जदु महाराज धर्मशील थे, उन्होंने पिता के कहने से भी अपना यौवन अपने पिता जजाति महाराज को नहीं दिया। यदि वो भक्ति के लिए मानते बेटा मैं बूढ़ा हो गया अब भजन नहीं कर पाता इसलिए तू अपनी युवावस्था मुझे दे दे मैं भजन करूं और ये मेरी वृद्धावस्था ले ले, तो मैं कहता हूं जैसे पहले ही जदु महाराज ही पहले ऐसे बेटे होते जो सबसे पहले आगे आकर के अपना यौवन उनको दे देते, उनकी वृद्धावस्था को ले लेते। किंतु उन्होंने देखा कि पिताजी हमारे कुछ अन्याय कर रहे हैं, उम्र भी हो गई है, विषय वासना को छोड़कर उनको भगवान का भजन करना चाहिए, आ कहां वो मेरा यौवन लेकर भोग विलास करेंगे, मैं इसके लिए नहीं दूंगा। चाहे वो जितना भी नाराज हो जाएं, मुझे अभी संपात कर दें, मैं अपने लौकिक कर्तव्य से भले ही च्युत हो जाऊं, कोई परवाह नहीं, इसमें हमारा मंगल ही होगा। ऐसा सोच करके उन्होंने अपनी जुआवस्था पिता को नहीं दी, बल्कि पिताजी ने उनको अभी संपात किया, जाओ यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते, पुत्र का कर्तव्य है पिता की आज्ञा मानना, और तू मेरी आज्ञा नहीं मान रहा और अपना यौवन मुझे नहीं दे रहा, इसलिए तुम राज्य से सदा के लिए वंचित रहेगा। यही नहीं, तुम्हारे आने वाले जितने भी पुत्र प्रपौत्र इत्यादि वंशज होंगे वो भी राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, राज्य पर उनका अभिषेक नहीं होगा। उन्होंने कहा ये वस्तु मुझे ग्रहण है, भगवान जहां थे वहीं से द्रवित हो गए। मेरे लिए इतना त्याग, अपना तो त्याग, अपने वंशजों का भी, जो राज्य पर आए न आए मैं भगवत भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं करूंगा, बस परम पिता परमेश्वर, वहां पर प्रसन्न हो गए। पिता का आज्ञा, माता का आज्ञा, समस्त शास्त्रों ने कहा है कि उनकी पालन करना ही हमारा पुत्र का कर्तव्य है, ये बात तो कहा, किंतु श्रीमद् भागवत ने डंके की चोट पर यह बतलाया, गुरु न शस्या स्वजनो न शस्या पिता न शस्या जननी न शस्या न मोचेत जह समूपेत मृत्यु, आसन्न जो मृत्यु हमारे सिर पर काल मड़रा रहा है उसे जो हमारी रक्षा करके कृष्ण के चरणों की सेवा में हमें जो लगा न सके, ऐसा पिता जन्म देने का अधिकारी नहीं है पुत्र को, और यदि जन्म भी देता है तो अनाधिकार वो करता है, ऐसे पिता का प्रत्याग करने में भी कोई हानि नहीं। जो माता अपने पुत्र को भगवत भजन के लिए शिक्षा न दे और विषयों में ही लगाए वो माता माता नहीं, वो भाई भाई नहीं जो अपने भाई को भजन करने के लिए सहायता नहीं करता, वो स्त्री स्त्री नहीं है जो पति को अपनी भगवान की सेवा में उनकी सहायता नहीं करती और उनको उद्बुद्ध नहीं करती, और वो पति भी पति नहीं है जो अपनी स्त्री को भगवान के भजन की तरफ में नहीं लगा करके विषयों की तरफ ही लगाते। यही समस्या पैदा हुई थी तुलसी जी के समक्ष। मीराबाई ने जब देखा जब घर वाले हमारे सभी विरोधी हो रहे हैं, भजन नहीं करने देते, तंग करते हैं, तो उन्होंने तुलसीदास जी के पास में एक गुप्त पत्र भेजा, मुझे क्या करना चाहिए इस स्थिति में, हमारी सास, हमारी ननद, हमारे ससुर, हमारे भाई, मेरी मैया और संसार के जितने लोग हैं हमारे विरोधी हो गए, मैं क्या करूं, भगवान का भजन छोड़ दूं या उन लोगों का आदेश पालन करूं। उन्होंने कहा तजिए कोटि बैरीशम जद्द परमशने तजौ पिता प्रहलाद विभीषण बंध भरत महतारी जिनके प्रिय न राम वैदेही, जिनके राम वैदेही राधा कृष्ण।